SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत नियंत्रित कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुआ हमला लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो ब्रॉडकास्ट मन की बात के 121वें एपिसोड की शुरुआत ही पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को याद करते हुए की। उन्होंने इस हमले को कश्मीर में लौटती शांति और समृद्धि को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश बताया।
ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है।
प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा।
इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा।
इस बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को पहलगाम हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी। एनआईए ने इस मामले में रविवार को जम्मू में केस दर्ज किया, जिसका आधार छानबीन के दौरान मिले सबूतों और चश्मदीदों के बयानों को बनाया गया है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और चरमपंथियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी हैं। भारतीय सेना लगातार कथित चरमपंथियों के घरों को चिन्हित कर उन्हें बम से उड़ा रही है। अब तक ऐसे 10 घरों को बम से उड़ाया जा चुका है। रविवार को कश्मीरी संगठनों ने कार्यवाही रोकने की मांग की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइस उमर फारूक ने केंद्र सरकार से कहा कि वह अंधाधुंध तरीके से तोड़फोड़ कर निर्दोष कश्मीरियों को सजा न दे। भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित करने की घोषणा को भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा निर्णायक कदम बता रहे हैं। पाकिस्तानी राजनेता भी इसे युद्ध की कार्रवाई बता भारत के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर जल का प्रवाह रोकना बहुत ही मुश्किल है। यदि ऐसा करना भी है तो उसके लिए नहरों और टिहरी जैसे बड़े बांधों का जाल बिछाना होगा, जिसमें दशकों लगेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत फिलहाल सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिलने वाला 20% पानी का उपयोग भी नहीं कर पा रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की किसी निष्पक्ष जांच में शामिल होने की बात कही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को रूसी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमले की जांच में चीन और रूस को भी शामिल किया जाए, जिससे असलियत का खुलासा हो। पहलगाम हमले का असर सोशल मीडिया पर भी पड़ा है। विवादित पोस्ट करने पर अभी तक 7 भाजपा शासित राज्यों से 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन गिरफ्तारियों में असम की विपक्षी पार्टी AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम, एक पत्रकार, एक वकील, 23 विद्यार्थी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 14 गिरफ्तारियां असम से की गई हैं। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए सहमति बन गई है। इसे भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सीमा विवाद और कोविड महामारी के चलते यह यात्रा पिछले 5 वर्षों से बंद थी। अब यह यात्रा 30 जून से 25 अगस्त के मध्य होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट भी खोल दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मई है। तय हुई प्रक्रिया के अनुसार इस साल उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते यात्रियों के 15 जत्थे कैलाश मानसरोवर जाएंगे। इनमें से 5 जत्थों में 50-50 यात्री उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे को पार करते हुए मानसरोवर जाएंगे, जबकि अन्य 10 जत्थों में 50-50 यात्रियों का ग्रुप सिक्किम से नाथुला होते हुए यात्रा करेगा। भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 25 और 26 अप्रैल को 2 दिन का एक अनूठा शिखर सम्मेलन भारत समिट 2025 का आयोजन किया। इसमें विश्व के 100 देशों से करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा आक्रामक राजनीतिक माहौल ने पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति मौलिक रूप से बदल दी है, जिसका उत्तर जनता को खुले मन से सुनकर ही मिल सकता है।
It is the people who know what has to be done. And if there is one thing that we have failed at, with all the social media and all the modern communication methods, it is that we have, as politicians, failed to deeply listen to what our people are trying to tell us. And this is the space where we can really operate, because our opponents have completely vacated this space. They're not there. They don't exist there.
शिखर सम्मेलन के समापन पर 2 दिनों के मंथन से उपजा हैदराबाद संकल्प भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पूर्व स्वीडिश विदेश मंत्री एन लिंडे ने जारी किया। दुनिया के आर्थिक ढांचे को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध यह संकल्प पत्र वेल्थ टैक्स, उसके न्यायसंगत पुनर्वितरण और भोजन, स्वास्थ्य, आवास और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर सार्वजनिक निगरानी की वकालत करने पर जोर देता है। इसके अलावा यह संकल्प पत्र पर्यावरण न्याय पर जोर देते हुए ग्लोबल ग्रीन डील की वकालत करता है और जलवायु संकट को एक गंभीर खतरे के रूप में पहचानते हुए कमजोर आबादी, स्वदेशी समुदायों और भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान भी करता है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।